ये आकाशवाणी दिल्ली है। दिल्ली कैबिनेट ने राष्ट्रीय राजधानी में स्कूलों द्वारा ली जाने वाली फीस को विनियमित करने के लिए दिल्ली स्कूल शिक्षा फीस निर्धारण और विनियमन में पारदर्शिता विधेयक 2025 को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इस महीने की 14 तारीख को 33 नवनिर्मित आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का उद्घाटन करेंगी। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दरियागंज में सद्भावना पार्क का उद्घाटन किया और दिल्ली पुलिस ने राजधानी में अवैध रूप से रह रहे 5 बांग्लादेशी नागरिकों को आनंद विहार क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं लवली निगम। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली कैबिनेट ने आज राष्ट्रीय राजधानी में स्कूलों द्वारा ली जाने वाली फीस को विनियमित करने के लिए दिल्ली स्कूल शिक्षा फीस निर्धारण और विनियमन की पारदर्शिता विधेयक 2025 को मंजूरी दे दी। बैठक के बाद संवाददाताओं को संबोधित करते हुए दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद ने कहा कि यह बिल पास होने के बाद अभिभावकों के साथ शोषण और भेदभाव बंद हो जाएगा। श्री सूद ने कहा कि बिल को पास कर दिया गया है।
आज से वो बिल दिल्ली कैबिनेट के हस्ताक्षर के बाद उपराज्यपाल जी के माध्यम से प्रेसिडेंट एक्सेंट के लिए जाएगा और अति शीघ्र 1 अप्रैल 2025 के रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से कानून बनेगा और दिल्ली के माता पिता जिनके शोषण का काम आम आदमी पार्टी की सरकार के नेतृत्व में लगातार निर्बाध रूप से होता रहा है उसको अंत करने का काम मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व वाली सरकार ने किया है।
उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दरियागंज में पुनर्विकसित सद्भावना पार्क का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री सक्सेना ने कहा कि वर्तमान सरकार के गठन के बाद ही यह तय कर लिया गया था कि इस पार्क का पुनर्विकास होगा। उन्होंने कहा कि राजधानी में विकास का वसंत आ चुका है।
आज सद्भावना पार्क का जो इनॉग्रेशन हुआ है माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे साथ में हैं, ये एक तरीके से डेवलपमेंट की बहार शुरू हुई है दिल्ली के अंदर जब से नई सरकार बनी है और आप देख रहे हैं कि हर रोज कहीं न कहीं कोई नया प्रोग्राम हो रहा है, यहाँ पर डेवलपमेंट की ही सर बात हो रही है। मुझे यकीन है कि जो पार्क बनकर तैयार हुआ है पुरानी दिल्ली के जो लोग हैं उनके लिए एक बहुत मील का पत्थर साबित होगा।
वहीं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सहकारी शासन और एकीकृत कार्यवाही की भावना पर बल दिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली के लिए बहुत ही सकारात्मक दौर शुरू हो चुका है।
1100 आरोग्य मंदिर हमने दिल्ली में नए बनाने का जो प्लान किया था, मुझे खुशी है कि उसमें से 33 आरोग्य मंदिर इस 100 दिन के छोटे से अपने कार्यकाल में हम लोग रेडी कर चुके हैं, जिसका उद्घाटन हम 14 तारीख को कर रहे हैं। बड़े बड़े नीतिगत फैसले इस समय में किए गए और केंद्र सरकार का पूरा सहयोग डबल इंजन सरकार के नाते मैं समझती हूँ दिल्ली को लगातार मिल रहा है।
एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा कि ये पार्क दिल्ली वासियों के लिए हरियाली, सौहार्द और शांति का नया प्रतीक बनेगा। एक ऐसा स्थान जहां लोग स्वच्छंद हवा, सुंदर वातावरण और सामाजिक समरसता के साथ सुकून के पल बिता सकेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व और मार्गदर्शन से दिल्ली और दिल्ली वासियों की सेवा में नई ऊर्जा, नए संकल्प से जुड़ जाने की प्रेरणा मिलती है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार पूरी निष्ठा के साथ प्रतिबद्ध है कि प्रधानमंत्री के विजन से प्रेरित होकर दिल्ली को विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया जाए। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की है कि दिल्ली सरकार इस महीने की 14 तारीख को 33 नव निर्मित आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का उद्घाटन करेगी। राष्ट्रीय राजधानी में आज संवाददाता सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए 1100 से अधिक ऐसे स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण किया जा रहा है। इस अवसर पर केंद्र सरकार के 11 वर्ष पूरे होने पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किए गए बुनियादी ढांचे के समर्थन ने दिल्ली सरकार पर स्वास्थ्य सेवा और परिवहन का बोझ कम करने में मदद की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार को लगातार सहायता प्रदान की है, चाहे वो वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या पिछली आम आदमी पार्टी की सरकार। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि मोदी सरकार के निरंतर समर्थन के कारण लैंडफिल, पहाड़ों, यमुना शुद्धिकरण और प्रदूषण की समस्याएं जल्द ही हल हो जाएंगी।
आज दिल्ली सरकार के लिए केंद्र एक बहुत बड़ी नियामत बनकर के काम कर रही थी। उसके लिए यदि मैं बताऊं कि कैसे 125,000 करोड़ रुपए की सड़क परियोजनाओं की सौगात केंद्र ने दिल्ली को दी, जिसमें से पहले फेज में 35,000 करोड़ के काम करवाए गए, दूसरे फेज में लगभग 64,000 करोड़ के काम जो पूरे होने की स्थिति में है, और 24,000 करोड़ के काम जो आगामी योजनाओं के हैं, जो DPR जिनका तैयार हो चुका है।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को नया शासकीय मूल मंत्र दिया है, रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म, जो नए भारत को विकास के नए नए आयाम दे रहा है। देश में पिछले एक दशक के दौरान सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण नीतियों के अंतर्गत उल्लेखनीय प्रगति हुई है। पिछले 11 वर्ष में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों और उपलब्धियों पर आकाशवाणी समाचार विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। इस कड़ी में आज हम आत्मनिर्भरता के माध्यम से रक्षा के क्षेत्र में भारत को वैश्विक शक्ति बनाने के प्रयासों पर जानकारी दे रहे हैं। एक रिपोर्ट।
पिछले एक दशक में भारत ने अपनी सुरक्षा नीति को स्पष्टता, दृढ़ निश्चय और आत्मविश्वास के साथ परिभाषित किया है। 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर 2025 में ऑपरेशन सिंदूर तक संदेश स्पष्ट है, भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरों को बर्दाश्त नहीं करेगा। ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद विरोधी प्रतिक्रिया में एक महत्वपूर्ण क्षण था, एक सटीक समन्वित मिशन जिसमें देश के वीर जवानों ने सीमा पार 9 आतंकी शिविरों को बेअसर कर दिया, जो पहलगाम आतंकी हमले का एक तत्पर और निर्णायक जवाब साबित हुआ। स्वदेशी विनिर्माण ने इसकी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। INS विक्रांत से लेकर लंबी ऊंचाई वाले लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर LCH प्रचंड तक भारत आत्मविश्वास के साथ डिजाइन और तैनाती कर रहा है। वहीं IDEX जैसी पहल स्टार्टअप और MSME भारतीय सुरक्षा बलों के लिए अत्याधुनिक समाधान प्रदान कर उन्हें और अधिक सशक्त बना रहे हैं। इसके अतिरिक्त रक्षा निर्यात बढ़कर रिकॉर्ड 23,622 करोड़ रुपए हो गया है, जो 2014 से 34 गुना की है। 5,000 से अधिक वस्तुएं अब सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची में शामिल है, और मौजूदा वित्त वर्ष में रक्षा पूंजी अधिग्रहण का 75% बजट घरेलू उत्पादन के लिए निर्धारित किया गया है। अग्रिम मोर्चे से लेकर कारखानों तक, युद्ध के मैदानों से लेकर बोर्ड रूम तक, भारत एक नए युग की शुरुआत कर रहा है, जहां सुरक्षा ही ताकत है और आत्मनिर्भरता उसकी ढाल। विष्णु की रिपोर्ट के साथ आदर्श, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
विकसित भारत का अमृतकाल, सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के 11 साल।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने बाढ़ प्रबंधन पर तैयारियों की समीक्षा के लिए आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। गृहमंत्री ने बाढ़ के खतरों को कम करने के लिए किए जा रहे दीर्घकालिक उपायों की भी समीक्षा की। दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा ने आज शास्त्री नगर में बने बाढ़ नियंत्रण कक्ष का निरीक्षण किया। उन्होंने बाढ़ विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की और तैयारियों का जायजा लिया। इस अवसर पर श्री वर्मा ने अधिकारियों को सतर्क रहने और बाढ़ से निपटने के लिए पूरी तैयारी रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकार जनता की सुरक्षा के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा कि बाढ़ नियंत्रण कक्ष दिल्ली की सभी बड़ी नालियों और यमुना नदी की निगरानी करता है। उन्होंने कहा कि यहां से बारिश के दौरान पानी के बहाव और ऊपर से छोड़े जा रहे पानी की जानकारी मिलती है। जैसे ही पानी का स्तर बढ़ता है, ये तय करते हैं कि कब अलर्ट जारी करना है और कब किस इलाके को खाली कराना है।
ये हमारा INDFC का हमारा कंट्रोल रूम है। इससे पूरे दिल्ली में जितनी हमारी मेजर ड्रेन्स है, इंक्लूडिंग यमुना रिवर, उसमें वाटर फ्लो कितना है, बारिश के समय में पीछे से कितना पानी अपनी कुंड से छोड़ते हैं, तो जैसे ही पानी का लेवल बढ़ता है तो हमको किस टाइम पर सारे एरिया को इवैक्यूएट कराना है, कब हमको एक जो है वार्निंग देनी है, तो ये सारा कंट्रोल रूम यहाँ से होता है।
दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आज दिल्ली विधानसभा में पानी की कहानी पुस्तक का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जल केवल एक संसाधन नहीं, जीवन का आधार है। एक रिपोर्ट।
श्री विजेंद्र गुप्ता ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि आज जल के अनियंत्रित उपयोग और लापरवाह व्यवहार के कारण लोग जल संकट के गंभीर दौर में प्रवेश कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि जल संकट अब केवल स्थानीय नहीं रहा बल्कि वैश्विक रूप ले चुका है, जिसके समाधान के लिए जन जागरण आवश्यक है। उन्होंने कहा कि साफ पानी के संरक्षण की जिम्मेदारी केवल सरकार या संस्थाओं की नहीं है बल्कि यह हम सभी की साझा नैतिक जिम्मेदारी है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि प्रत्येक नागरिक को इस दिशा में व्यक्तिगत योगदान देना होगा। श्री गुप्ता ने कहा कि हर बूंद बचाना और भविष्य को संवारना हम सब की जिम्मेदारी है। अमन की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए नेहा गोस्वामी।
दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता आतिशी को आज कालकाजी विधानसभा क्षेत्र के भूमिहीन कैंप पर एक प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लेने के बाद रिहा कर दिया। इस दौरान श्रीमती आतिशी ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाया कि उन्होंने भूमिहीन कैंप की झुग्गियों को तोड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने झुग्गी वालों को जहां झुग्गी वहां मकान का वादा किया था जिसे अब वे पूरा नहीं कर पा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने राजधानी में अवैध रूप से रह रहे 5 बांग्लादेशी नागरिकों को शहर के आनंद विहार क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए अवैध नागरिकों में से 3 नाबालिग हैं। पुलिस ने बताया है कि इन अवैध नागरिकों ने भारत बांग्लादेश सीमा के निकट नाधिकृत नदी मार्गों से अवैध रूप से भारत में प्रवेश किया था। पुलिस ने बताया कि उनके मोबाइल फोन से बांग्लादेशी नागरिकता से संबंधित दस्तावेजों के रूप में डिजिटल साक्ष्य बरामद किए गए हैं। दिल्ली पुलिस ने बताया कि इन अवैध नागरिकों के निर्वासन की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 26 किलोग्राम से अधिक मात्रा में उच्च गुणवत्ता का मादक पदार्थ जब्त किया गया है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि ये गिरोह आंध्र प्रदेश और दिल्ली के बीच मादक पदार्थ का व्यापार करते थे। पुलिस ने कहा कि इस गिरोह के अन्य सदस्यों का पता लगाने तथा आपूर्ति श्रृंखला को पूरी तरह समाप्त करने के लिए दिल्ली पुलिस की कार्यवाही जारी है। राष्ट्रीय राजधानी के द्वारका सेक्टर 13 स्थित शब्द अपार्टमेंट की 7वीं मंजिल पर एक फ्लैट में आग लगने से आज एक व्यक्ति और उनके 2 बच्चों की मृत्यु हो गई। दिल्ली अग्निशमन विभाग के अनुसार आग बुझाने के लिए 8 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग लगने के कारण स्वयं को बचाने के लिए इन लोगों ने 7वीं मंजिल से छलांग लगाई थी। दिल्ली के मंगोलपुरी इंडस्ट्रियल एरिया फेज 1 में आज सुबह एक रबर फैक्ट्री में आग लग गई। आग लगने की सूचना मिलने ही दमकल की 14 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया। संवाददाताओं के साथ बातचीत में दमकल अधिकारी सरबजीत ने कहा कि आग लगने का कारण अभी पता नहीं चल पाया है, लेकिन स्थिति नियंत्रण में है और किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। मौसम। राजधानी में आज तेज धूप और लू का दौर जारी है, जिससे आम जन को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 43.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 27.8 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान लू चलने की संभावना है। कल का अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। देश भर के 50,000 से अधिक संगठनों ने 21 जून को आयोजित होने वाले योग संगम की मेजबानी करने के लिए पंजीकरण किया है। ये सामूहिक भागीदारी के लिए एक नया रिकॉर्ड है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली कैबिनेट ने राष्ट्रीय राजधानी में स्कूलों द्वारा ली जाने वाली फीस को विनियमित करने के लिए दिल्ली स्कूल शिक्षा फीस निर्धारण और विनियमन में पारदर्शिता विधेयक को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इस महीने के 14 तारीख को 33 नवनिर्मित आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का उद्घाटन करेंगी। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दरियागंज में सद्भावना पार्क का उद्घाटन किया और दिल्ली पुलिस ने राजधानी में अवैध रूप से रह रहे 5 बांग्लादेशी नागरिकों को आनंद विहार क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।